चक्रीय सिद्धांतों में अब हम ओस्वाल्ड स्पेंगलर के विचार पर चर्चा करेंगे। जर्मन दार्शनिक ओस्वाल्ड स्पेंगलर ने अपने पुस्तक द डिक्लाइन ऑफ द वेस्ट 1926 में यह बताया है कि किसी भी संस्कृति का विकास चक्रीय रीति यानी साइक्लिक मैनर से होता है। उनका यह सिद्धांत दुनिया के 8 प्रमुख संस्कृतियों के अध्ययन पर आधारित था। जिन संस्कृतियों का उन्होंने अध्ययन किया है वे हैं इजिप्टियन, मेसोपोटामियन, हिंदू, चाइनीज, क्लासिकल या एप्लोनियन, अरबियन या मैजियन, मयान एवं वेस्टर्न या फोर्टिम। उन्होंने रूसी संस्कृति का भी अलग से जिक्र किया, पर अन्य संस्कृतियों की तरह उसका कोई विस्तार से विश्लेषण प्रस्तुत नहीं किया है। उन्होंने आदिम जातीय समाज का विश्लेषण करने का प्रयास नहीं किया, क्योंकि उनका मानना था कि आदिम जातीय समाज इतिहासहीन यानी हिस्ट्रीलेस है। संस्कृति की तुलना सावियों से करते हुए उन्होंने कहा है कि कल्चर्स आर ऑर्गेनिज्म एंड वर्ल्ड हिस्ट्री इज देयर कलेक्टिव बायोग्राफी। स्पेंगलर का मानना है कि जैसे व्यक्तियों के जीवन में उत्थान एवं पतन होता है, वैसे ही संस्कृति का भी उत्थान एवं पतन होता है। जैसे व्यक्ति का जीवन चक्र बचपन यानी चाइल्डहुड, युवा यानी यूथ, परिपक्वता यानी मैच्योरिटी एवं बुढ़ापा यानी सेनालिटी के चरणों से क्रमशः गुजरता है, संस्कृति भी ठीक उसी ढंग से 4 चरणों से गुजरकर समाप्त हो जाती है। संस्कृति के चक्रीय विकास के इस नियम को स्पष्ट करने के लिए उन्होंने इसकी तुलना 4 ऋतुओं से की है, स्प्रिंग यानी वसंत, ऑटमन यानी पतझड़, सर्दी यानी विंटर एवं ग्रीष्म यानी समर। स्पेंगलर ने बताया है कि किसी संस्कृति का जीवन लगभग 1000 साल का होता है, क्योंकि पाश्चात्य संस्कृति का उदय लगभग 900 ईस्वी के आसपास हुआ, इसलिए उनका मानना है कि पाश्चात्य संस्कृति अब पतन के कगार पर है। बहुत सारे समाजशास्त्रियों का कहना है कि स्पेंगलर का यह सिद्धांत कतई मौलिक सिद्धांत नहीं है, क्योंकि उन्होंने यह सिद्धांत डैनिलेवस्की की पुस्तक रशिया एंड यूरोप से चुराया है। पिट्रिम ए सोरोकिन का विचार। सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत के क्षेत्र में रूसी अमेरिकन समाजशास्त्री सोरोकिन की देन महत्वपूर्ण है, जिसकी चर्चा उनकी पुस्तक सोशल एंड कल्चरल डायनेमिक्स वॉल्यूम 4 1937-41 में देखने को मिलती है। सोरोकिन ने अनुभवाश्रित आंकड़ों यानी इम्पेरिकल डाटा के सहारे चक्रीय सिद्धांत को स्थापित करने की कोशिश की है। उन्होंने परिवर्तनों के विश्लेषण के निमित्त मानव इतिहास के बीते 3000 वर्षों का अध्ययन किया। उन्होंने अपने पुस्तक में अनेक युद्धों, आंदोलनों एवं क्रांतियों को दर्शाया है। सोरोकिन ने समाज की संस्कृति को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। वे हैं आदर्शात्मक संस्कृति यानी आइडियशनल कल्चर, इंद्रियपरक संस्कृति यानी सेंसेट कल्चर एवं आदर्शवादी संस्कृति यानी आइडियलिस्टिक कल्चर। आदर्शात्मक संस्कृति यानी आइडियशनल कल्चर का संबंध आत्मा यानी सोल, मस्तिष्क यानी माइंड, आध्यात्मिक विचार या भावना यानी स्पिरिट आदि से है। इस अवस्था में भौतिक सत्य की जगह परम सत्य यानी एब्सोल्यूट ट्रुथ की बात की जाती है। इसमें भौतिकवादी विचारों की जगह अभौतिकवादी विचारों को अधिक स्वीकारा जाता है। इस संस्कृति में ज्ञान, कला, दर्शन, धर्म, साहित्य आदि को आध्यात्मिक दृष्टिकोण से देखा जाता है। अच्छे बुरे की पहचान आध्यात्मिक आधारों पर की जाती है। आत्मत्याग, भक्ति, शांति जैसी भावनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। नैतिकता की तुलना में उपयोगितावाद यानी यूटिलिटेरियनिज्म एवं सुखवाद यानी हेडोनिज्म का महत्व घट जाता है। प्रौद्योगिक विकास की रफ्तार घट जाती है। सामाजिक जीवन के सभी क्षेत्रों में यथा राजनीतिक, आर्थिक, न्यायिक आदि में धार्मिक मूल्यों की प्रधानता देखने को मिलती है। प्राचीन एवं मध्यकालीन भारत तथा मध्यकालीन यूरोप आदर्शात्मक संस्कृति का एक अच्छा उदाहरण है। इंद्रियपरक संस्कृति यानी सेंसेट कल्चर का संबंध अनुभवाश्रित सत्य यानी एम्पेरिकल रियलिटी से होता है। इस अवस्था में ज्ञान विभिन्न इंद्रियों के द्वारा होता है। कहने का मतलब इंद्रिय परक संस्कृति के अंतर्गत वे वस्तुएं आते हैं जिन्हें हम देख, सुन, छू एवं चख सकते हैं। मानव का ध्यान भौतिक, मूर्त एवं अस्थूल वस्तुओं पर अधिक केंद्रित होता है। यह संस्कृति वैज्ञानिक विकास की ओर अधिक अग्रसर होती है। कला, साहित्य और दर्शन की प्रकृति प्रत्यक्षवादी होती है। आर्थिक क्षेत्र में प्रतियोगिता बढ़ती है। समाज में प्रौद्योगिक विकास यानी टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की संभावना बहुत बढ़ जाती है। न्याय की प्रकृति भी यथार्थ एवं भौतिकवादी हो जाती है। दूसरे शब्दों में धर्म, परंपरा, प्रथा इत्यादि का प्रभाव न्याय के क्षेत्र में कम हो जाता है। इस अवस्था में लोगों का जीवन दर्शन खाओ पियो एवं मौज करो का होता है। सोरोकिन के शब्दों में ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी, फॉर टुमारो यू मे डाई। सुरुकिन के अनुसार पश्चिमी समाज इंद्रियपरक संस्कृति के दौर से गुजर रहा है। वर्तमान भारतीय संस्कृति भी इसी रास्ते पर तेजी से अग्रसर है। आदर्शवादी संस्कृति यानी आइडियलिस्टिक कल्चर में इंद्रियपरक संस्कृति यानी सेंसेट कल्चर एवं आदर्शात्मक संस्कृति यानी एडिशनल कल्चर दोनों के तत्व पाए जाते हैं। दूसरे शब्दों में यह संस्कृति दोनों संस्कृति के बीच की स्थिति है। जब समाज की संस्कृति इंद्रियपरक से आदर्शात्मक या आदर्शात्मक से इंद्रियपरक संस्कृति की ओर परिवर्तित होती है तो कुछ समय के लिए आदर्शवादी संस्कृति की स्थिति आती है। सुरुकिन के विचार में ऐसी स्थिति तब विशेष रूप से उत्पन्न होती है जब आदर्शात्मक संस्कृति चेतनात्मक संस्कृति में बदलती है। ऐसी संस्कृति में भौतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों का अच्छा समन्वय देखने को मिलता है। सुरुकिन का मानना है कि इंद्रियपरक संस्कृति एवं आदर्शात्मक संस्कृति सांस्कृतिक व्यवस्था यानी कल्चरल सिस्टम के दो ध्रुव हैं। हर सांस्कृतिक व्यवस्था उपव्यवस्थाओं का एक संकलन होता है जिसके अंतर्गत उसके विशिष्ट तत्व एवं लक्षण समाविष्ट होते हैं। इनकी उपव्यवस्थाओं के इस एक साथ मिलने पर एक उच्चतर व्यवस्था का जन्म होता है। यह व्यवस्था इंद्रिय परक या आदर्शात्मक हो सकती है। इसी तरह सोरोकिन के अनुसार जब एक सांस्कृतिक व्यवस्था अपने चरम सीमा पर पहुंच जाती है तो उसे अपनी गति को उल्टी दिशा में मोड़ना पड़ता है, भले ही कोई व्यवस्था कितनी अच्छी या बुरी क्यों न हो, उसे विकसित होने की एक सीमा होती है। सोरोकिन का यह विचार सीमाओं का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ लिमिट्स के नाम से जाना जाता है। उनके अनुसार सामाजिक परिवर्तन एक ऐसी प्रक्रिया है जो दो सांस्कृतिक व्यवस्थाओं यथा इंद्रिय परक एवं आदर्शात्मक संस्कृति के बीच व्यक्त होती है। एक सांस्कृतिक व्यवस्था से दूसरी सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन निश्चित लेकिन अनियमित ढंग से होता है। यह भी आवश्यक नहीं है कि सांस्कृतिक व्यवस्था में परिवर्तन हमेशा एक ही दिशा में हो। अब यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि संस्कृति या आदर्शात्मक से इंद्रिय परक संस्कृति में परिवर्तन के क्या कारण हैं। सोरोकिन ने इस प्रश्न का उत्तर अपने अंतर्भूत परिवर्तन के सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ इमेनेसन चेंज के माध्यम से दिया है। उन्होंने परिवर्तन का कारण प्रकृति में क्रियाशील आंतरिक शक्ति को माना है। दूसरे शब्दों में सामाजिक परिवर्तन एक प्रक्रिया है जो संस्कृति के अंदर ही क्रियाशील शक्तियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। सोरोकिन के सांस्कृतिक एवं सामाजिक गतिशीलता का सिद्धांत तथ्यों को अति सरल कर देता है। ऐतिहासिक तथ्यों का विश्लेषण जितना सरल दिखाई पड़ता है वस्तुतः उतना सरल नहीं है। सोरोकिन का इंद्रिय परक यानी सेंसेट आदर्शात्मक यानी आइडेशनल एवं आदर्शवादी यानी आइडियलिस्टिक के रूप में संस्कृति का विभाजन बहुत लोगों को सही नहीं जचता है। आर्नोल्ड टाइनबी का विचार। ब्रिटिश इतिहासकार टाइनबी ने भी डैनिले वस्की के एवं स्पेंगलर की तरह ही परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत का समर्थन किया है। उन्होंने दुनिया के 21 प्रमुख सभ्यताओं का गहन अध्ययन किया जिनका वर्णन उनकी पुस्तक अ स्टडी ऑफ हिस्ट्री में मिलता है। उन्होंने स्पेंगलर की तरह यह विचार व्यक्त किया है कि हर सभ्यता की एक चक्रीय रीति से जन्म एवं मृत्यु होती है, पर उन्होंने स्पेंगलर की तरह यह स्पष्ट करने की आवश्यकता महसूस नहीं की कि किस सभ्यता का जीवन चक्र कितना लंबा होता है। उनका चक्रीय सिद्धांत चुनौती एवं प्रत्युत्तर का सिद्धांत प्रिंसिपल ऑफ चैलेंज एंड रिस्पॉन्स पर आधारित है। किसी भी सभ्यता को चुनौती दो क्षेत्रों में मिलती है, एक भौगोलिक परिस्थिति एवं दूसरी सामाजिक परिस्थिति। प्रत्येक सभ्यता के प्रारंभ में लोगों को समाज के भौगोलिक परिस्थितियों के चलते बहुत प्रकार की प्राकृतिक आपदाओं को झेलना पड़ता है। इन चुनौतियों को झेलना कोई आसान काम नहीं होता है। समाज और प्रकृति के बीच जो एक चुनौतीपूर्ण स्थिति होती है उसका सामना करने के लिए मनुष्य को विभिन्न प्रकार की क्षमताओं की आवश्यकता होती है। इस अस्तित्व की लड़ाई में उसकी शक्ति का काफी ह्रास होता है। दूसरी चुनौती का स्वरूप भौगोलिक न होकर सामाजिक होता है। इस चुनौती का स्रोत आंतरिक और बाह्य दोनों होता है। टैनबी का आंतरिक स्रोत से तात्पर्य स्वदेशी सर्वहारा वर्ग यानी इंटरनल प्रोलेटरिस्ट से है, जो ज़्यादा लंबे समय तक अपने ही समाज के सृजनशील अल्पसंख्यकों यानी क्रिएटिव माइनॉरिटी के इशारे पर काम नहीं करना चाहता है। फलस्वरूप दोनों के बीच तत्व एवं संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। बाह्य स्रोतों के अंतर्गत उन्होंने बाहरी आक्रमणकारी बर्बर जाति के लोगों को रखा है, जिसे बाह्य सर्वहारा वर्ग यानी एक्सटर्नल प्रोलेटरिस्ट भी कहा गया है। दूसरे शब्दों में, जब सभ्यता का विकास होता है तो उस सभ्यता को सृजनशील अल्पसंख्यकों एवं स्वदेशी सर्वहारा वर्ग के संघर्ष मात्र से ही खतरा नहीं होता है, बल्कि पड़ोसी बर्बर जाति के लोगों से भी खतरा बना रहता है। जब इस प्रकार की कला और तत्व की स्थिति किसी सभ्यता के सामने उत्पन्न हो जाती है तो वह पतन और बिखराव की ओर बढ़ने लगता है। संक्षेप में हम यही कह सकते हैं कि प्रत्येक सभ्यता का भविष्य सृजनशील अल्पसंख्यकों पर निर्भर करता है। सभ्यता के आरंभिक काल में वे कल्पनाशील, शक्तिशाली एवं चुनौतियों का बहादुरी के साथ मुकाबला करने वाले होते हैं। नेतृत्व की रचनात्मक क्षमता के कारण संबंधित समाज विकास के चरमोत्कर्ष बिंदु पर पहुंच जाता है, लेकिन जब वे चुनौतियों का ठीक से सामना नहीं कर पाते हैं तो सभ्यता का पतन निश्चित हो जाता है। दूसरे शब्दों में, सभ्यता का पतन सृजनशील अल्पसंख्यकों का चुनौतियों से हार है। अन्य सिद्धांतों की तरह सामाजिक परिवर्तन का चक्रीय सिद्धांत उतना लोकप्रिय नहीं हो सका। इस सिद्धांत का सबसे बड़ा दोष यह है कि यह कपोल कल्पित तथ्यों यानी स्पेकुलेटिव फैक्ट्स पर आधारित है। दूसरे शब्दों में, यह सिद्धांत अनुभवाश्रित यथार्थ यानी एम्पेरिकल रियलिटी से काफ़ी दूर है। इस बात का कोई प्रमाण सामने नहीं आ पाया है कि समाज जहाँ से आरंभ हुआ है फिर वहीं लौट जाएगा। अतः चक्रीय सिद्धांत प्रमुख समाजशास्त्रीय सिद्धांतों का अंग नहीं बन पाया है। ऐसा लगता है कि चक्रीय सिद्धांत का दृष्टिकोण निराशावादी है। इस सिद्धांत के अंतर्गत समाज को धीरे धीरे नष्ट हो जाना है तथा चक्रीय प्रक्रिया यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे टाला नहीं जा सकता। समाज का ह्रास होना और फिर वहां से एक नए समाज का सृजन होना एक काल्पनिक तथ्य सा लगता है। संघर्ष सिद्धांत, कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। संघर्ष संबंधी विचार प्राचीन काल से ही सामाजिक चिंतकों का एक मुख्य विषय रहा है। पॉलिबियस ने कहा था कि जानवरों की तरह ही मानव में भी समूह में रहने एवं संघर्ष करने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शासक वर्ग के अत्याचार से बचने एवं उसे अपदस्थ करने के लिए सदा शासित जनसमूह को संगठित होकर संघर्ष करना पड़ता है। इब्न खांडुल, हॉब्स, डेविड ह्यूम आदि आरंभिक सामाजिक विचारकों ने भी अपने अपने ढंग से संघर्ष संबंधी विचार प्रस्तुत किए हैं। चार्ल्स डार्विन के जैविक उद्विकास के सिद्धांत ने संघर्ष विचारकों को एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। डार्विन द्वारा प्रतिपादित अस्तित्व के लिए संघर्ष, स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस का सिद्धांत ने संघर्ष संबंधी चिंतन की प्रक्रिया को बहुत ही प्रभावित किया। हर्बर्ट स्पेंसर एवं डार्विन के योग्यतम की उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट जैसे विचार ने भी संघर्ष मूलक चिंतकों को वैज्ञानिक आधार प्रदान किया। कार्ल मार्क्स का विचार। संभवतः मार्क्स विश्व के सबसे पहले सामाजिक चिंतक थे जिन्होंने यह प्रमाणित करने का प्रयास किया कि सामाजिक परिवर्तन वर्ग संघर्ष द्वारा ही संभव है। वर्ग संघर्ष क्यों और कैसे होता है यह समझने के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि मार्क्स ने सामाजिक संरचना को किस प्रकार परिभाषित किया है। कार्ल मार्क्स के अनुसार सामाजिक संरचना के मुख्य दो तत्व होते हैं। पहला आधारभूत संरचना यानी सब स्ट्रक्चर और दूसरा अधिरचना या आश्रित संरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर। समस्त उत्पादन प्रणाली यानी मोड ऑफ प्रोडक्शन को उन्होंने आधारभूत संरचना माना है और समाज के अन्य अंगों जैसे सरकार, धर्म, परिवार, आदर्श, दर्शन इत्यादि को आश्रित समाज कहा है। मार्क्स ने कहा है कि उत्पादन प्रणाली ही समस्त सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। अतः यदि आर्थिक व्यवस्था में कोई परिवर्तन होता है तो उससे समाज के बाह्य हिस्से यानी आश्रित संरचना में भी परिवर्तन आता है। मार्क्स ने आधारभूत संरचना के दो उपभागों में विभाजित किया है। पहला उत्पादन के साधन यानी मीन्स और टूल्स ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत भूमि, प्रौद्योगिकी एवं अन्य पूंजी सामग्री सम्मिलित है एवं दूसरा उत्पादन के संबंध रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन। इसके अंतर्गत उत्पादन की प्रक्रिया से जुड़े विभिन्न वर्ग के लोगों के बीच का संबंध आता है। मार्क्स ने इसे भी दो उपभागों में बांटा है, उत्पादन साधन के मालिक यानी ओनर ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जिसे पूंजीवादी समाज में बुर्जुआ या पूंजीपति यानी कैपिटलिस्ट कहा जाता है और दूसरा श्रमिकगण यानी वर्कर्स जिसे मार्क्स ने सर्वहारा यानी प्रोलेटरिस्ट कहा है। मार्क्स ने दलील दी है कि अर्थव्यवस्था अपने आप में एक स्वतंत्र कारक है। मनुष्य अपनी समस्याओं को सुलझाने एवं सुख सुविधाओं को बढ़ाने के लिए हमेशा प्रकृति पर हावी होना चाहता है। इससे प्रौद्योगिकी में विकास होता है और फलस्वरूप उत्पादन के सारे साधनों में परिवर्तन आता है। चूंकि उत्पादन का साधन समाज की आधारभूत संरचना है इसलिए जब इसमें परिवर्तन आता है तो उत्पादन के संबंधों में भी परिवर्तन आता है। समाज के ऐतिहासिक विकास में एक ऐसा भी चरण आता है जब उत्पादन के संबंध तथा उत्पादन के साधन विकास को अवरुद्ध करने लगते हैं जिसके फलस्वरूप समाज में वर्ग संघर्ष होता है और मानव समाज एक स्तर से दूसरे ऐतिहासिक स्तर में प्रवेश करता है। मार्क्स का मानना है कि जब तक समाज में वर्ग विभाजन है, समाज में शोषण का सिलसिला जारी रहेगा,
क्योंकि यह विभाजन शोषण पर आधारित है।
उसी तरह जब तक समाज में शोषण है, संघर्ष का सिलसिला भी जारी रहेगा। इसी वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल की प्रक्रिया से समाज में परिवर्तन संभव होता आया है, ऐसा ही मार्क्स मानते थे। इसी अर्थ में उन्होंने अपने साम्यवादी घोषणा पत्र यानी कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में लिखा है, अभी तक के सभी समाजों का इतिहास वर्ग संघर्षों का इतिहास रहा है। द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। शोषक एवं शोषित, एक्सप्लोरेटर एवं एक्सपोलिटेट सदा एक दूसरे के विरुद्ध प्रत्यक्ष या परोक्ष रीति से संघर्षरत रहे हैं। इसके परिणाम स्वरूप ही समाज एक स्तर से दूसरे स्तर में जाता रहा है। आधुनिक पूंजीवाद समाज में व्यक्तिगत संपत्ति यानी प्राइवेट प्रॉपर्टी सबसे अधिक संगठित करता है। लाभ उत्पादन का परम लक्ष्य होता है। पूंजीपति मजदूरों के श्रम को उचित मूल्य से कम मूल्यों में खरीदकर अतिरिक्त मूल्यों यानी सरप्लस वैल्यू को पूंजी में बदल देते हैं। इस तरह पूंजी से पूंजी की सतत वृद्धि होती रहती है। मार्क्स के अनुसार पूंजी वह धन है जो श्रमिकों के शोषण के निमित्त प्रयोग किया जाता है। यही शोषण कालांतर में वर्ग संघर्ष का मुख्य कारक बनता है। उपर्युक्त विवरण से यही स्पष्ट होता है कि समाज में मुख्य रूप से दो ही वर्ग पाए जाते हैं, एक वह जो यथास्थितिवादी यानी स्टेटस क्यूस्ट होता है, जो परिवर्तन का घोर विरोधी होता है, दूसरा वह जो यथास्थिति का विरोधी होता है, वह हर स्थिति में परिवर्तन का समर्थन करता है। चूंकि समाज दो खेमों में विभक्त रहता है, एक परिवर्तन विरोधी और दूसरा परिवर्तन समर्थक, इसलिए समाज में वर्ग संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। पहला समूह शोषकों का है और दूसरा शोषितों का। मार्क्स ने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था ही सामाजिक व्यवस्था की आधारशिला है। सामाजिक संरचना में परिवर्तन तभी आता है जब आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन आता है। उन्होंने बताया है कि आर्थिक व्यवस्था के दो प्रमुख तत्व होते हैं और दोनों एक दूसरे से अंतर संबंधित होते हैं। उत्पादन के साधन यानी मेन्स ऑफ प्रोडक्शन तथा उत्पादन के संबंध यानी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन, इन दोनों को मिलाकर उन्होंने उसे समाज का आधार संरचना यानी सब स्ट्रक्चर कहा है। यह समाज के आर्थिक आधार के नाम से भी जाना जाता है। परिवार, धर्म, विभिन्न प्रकार के विश्वास, राजनीति, शिक्षा आदि को इन्होंने इस आर्थिक व्यवस्था पर एक आश्रित व्यवस्था माना है। इसे उन्होंने समाज का आश्रित संरचना या अधिरचना यानी सुपर स्ट्रक्चर और इंफ्रास्ट्रक्चर कहा है। मार्क्स ने यह तर्क प्रस्तुत किया है कि आश्रित संरचना या अधिरचना में परिवर्तन तभी आता है जब समाज के आर्थिक आधार में परिवर्तन आता है, क्योंकि प्रत्येक समाज आधार संरचना का प्रतिबिंब होता है और यह परिवर्तन दो विरोधी समूहों के बीच संघर्ष की स्थिति से उत्पन्न होता है। संघर्ष की स्थिति इसलिए उत्पन्न होती है कि शोषणकर्ता शोषित को हमेशा अपने चुंगल में रखना चाहता है और शोषित हमेशा शोषकों के चुंगल से बाहर निकलने की कोशिश करता है। सामाजिक परिवर्तन इस विरोध की प्रक्रिया के माध्यम से संभव हो पाता है। आर्थिक आधार या आधार संरचना किस प्रकार अधिरचना से जुड़ा हुआ है, यह एक सरल रेखाचित्र के माध्यम से स्पष्ट किया जा सकता है। इस रेखाचित्र में एक त्रिभुज है जिसके सबसे ऊपर समाज है और त्रिभुज तीन हिस्सों में बटा हुआ है। सबसे पहले में फैमिली, रिलीजन एंड बिलीफ सिस्टम, पॉलिटिक्स एंड एजुकेशन, ये सब हैं। बीच वाले हिस्से में उत्पादन के साधन यानी रिलेशंस ऑफ प्रोडक्शन है और सबसे अंत में उत्पादन के साधन यानी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है। सुरुकिन ने बताया है कि मार्क्स के सिद्धांत में काफी कमियां हैं, जैसे मार्क्स ने अपने विचारों में आर्थिक निर्धारणवाद यानी इकोनॉमिक डिटरमिनिज्म पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है। उन्होंने कहा है कि द मोड ऑफ प्रोडक्शन डिटरमाइंस द जनरल कैरेक्टर ऑफ द सोशल, पॉलिटिकल एंड स्पिरिचुअल प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। इस प्रकार के विचार से आर्थिक व्यवस्था एवं सामाजिक संरचना के बीच एक तरफा संबंध का बोध होता है। इन दो व्यवस्थाओं के बीच इतना एक तरफा संबंध आज लोग स्वीकार करने को तैयार नहीं हैं। आज का वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रकार्यात्मक संबंध यानी फंक्शनल रिलेशनशिप पर जोर देता है। मार्क्स के एक पक्षीय यानी वन साइडेड कार्य कारण संबंध यानी कॉजुअल रिलेशनशिप को लोगों ने तार्किक एवं तथ्यपूर्ण दोष, लॉजिकल एवं फैक्चुअल फैलसी की संज्ञा दी है। मार्क्स ने आर्थिक कारक यानी इकोनॉमिक फैक्टर को प्राथमिक कारक यानी प्राइमरी फैक्टर माना है। चूंकि प्राथमिक कारक का अर्थ कभी एकमात्र कारक यानी सिंगल और ओनली फैक्टर नहीं होता है, इसलिए प्राथमिक कारक को 100% अंक नहीं दिया जा सकता है। ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक कारक को 90% अंक प्रदान किया जा सकता है। यदि आर्थिक कारक सामाजिक संरचना को 90% तक प्रभावित करता है तो कुछ ऐसे भी कारक हैं जो शेष 10% के अंतर्गत माने जाएंगे। न मार्क्स और न ही एंगेल्स और न ही उनके अनुयायी आज तक यह बता पाए हैं कि उस 10% में कौन कौन से निर्धारक कारक शामिल हैं। मार्क्स ने भौगोलिक एवं जैविक कारकों की पूरी तरह से नकार दिया है। व्यक्ति के अपने अनुभवों, जैविक गुणों, धार्मिक विश्वासों की अपनी भूमिका होती है, लेकिन उन्होंने व्यक्तियों को सिर्फ एक आर्थिक प्राणी यानी इकोनॉमिक क्रिएचर के रूप में देखने का प्रयास किया है। यह सही नहीं है। मानव का संबंध सिर्फ पेट भर रोटी से है, इस विचार को शायद ही आज कोई स्वीकार करे। मार्क्स को समस्त मानव इतिहास में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष दिखाई पड़ता है। उन्होंने कभी समाज में समझौता, सहयोग और शांति दिखाई नहीं पड़ी। यदि मानव इतिहास में सिर्फ संघर्ष ही संघर्ष रहता तो कभी भी संघीय सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संघों की स्थापना नहीं होती। मानव समाज अपने में लड़कर मर कट जाता और वर्तमान सभ्यता कभी भी इस रूप में दिखाई नहीं पड़ती। मार्क्स ने वर्ग संघर्ष की विचारधारा को आर्थिक कारकों से जोड़कर ऐतिहासिक तथ्यों को झुठलाया है। इतिहास इस बात का गवाह है कि समाज में संघर्षों का आधार प्रजाति, राष्ट्रीयता और धार्मिक विश्वास भी है। मार्क्स के वर्ग की अवधारणा में सोरोकिन को काफी दोष दिखाई देता है। जैसे मार्क्स ने वर्ग के अंतर्गत कहीं समाज में पाए जाने वाले बहुत तरह के विभाजन के आधार जैसे जाति, पेशा एवं राजनीतिक स्थिति को समेट कर रख दिया है, तो कहीं उन्होंने वर्ग को सिर्फ आर्थिक आधार पर ही देखने का कष्ट किया है। मार्क्स की पुस्तक दास कैपिटल का तीसरा खंड वर्ग विश्लेषण से अंत होता है, लेकिन वह कुछ कारणों से अधूरा ही रह गया है, जिस मार्क्स ने किसी कारणवश कभी पूरा नहीं किया चूंकि मार्क्स के वर्ग की अवधारणा ही अपूर्ण है, इसलिए उनके वर्ग संघर्ष सिद्धांत में काफी अनिश्चितताएं हैं। मार्क्स के बहुत सारे अनुयायियों ने वर्ग की अवधारणा को स्पष्ट करने की कोशिश की है, पर विद्वानों ने एक दूसरे के विरोधी विचार को प्रकट कर इसे और पेचीदा बना दिया है। इतना ही नहीं, सर्वहारा यानी प्रोलेटरिस्ट, बुर्जुआ यानी बोरुजियोसिस आदि शब्दों को ठीक से परिभाषित नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में मार्क्स के वर्ग संघर्ष सिद्धांत को अपूर्ण, अवैज्ञानिक एवं विरोधाभास से भरा कहा जाना गलत नहीं होगा। सोरोकिन ने मार्क्स के सिद्धांतों के बारे में संक्षेप में कहा है कि देयर इज नथिंग इन देयर थ्योरी दैट वॉज नॉट सेड बाई अर्लियर ऑथर्स। सेकेंड, वॉट इज रियली ओरिजिनल इज फार फ्रॉम बींग साइंटिफिक। थर्ड, द ओनली मेरिट ऑफ द थ्योरी इज दैट इट इज इन सम वॉट स्ट्रोंगर एंड एक्सग्रेटेड फ्रॉम जनरलाइज द आइडियाज गिवेन बिफोर द टाइम ऑफ मार्क्स। सोरोकिन ने बौद्धिक रूप से मार्क्स और लेनिन के योगदान को मध्यम से निम्न स्तर का बताया है। उन्होंने आगे स्पष्ट किया है कि देयर इज नो रीजन इवन फॉर रिगार्डिंग देयर साइंटिफिक कंट्रीब्यूशंस एज समथिंग अबव द एवरेज। पी ए सोरोकिन, 1978। अब हम लुडविक गंप्लोविच के विचार का अध्ययन करेंगे। लुडविक गंप्लोविच यह एक ऐसे समाजशास्त्री थे जो डार्विन एवं स्पेंसर की योग्यतम के उत्तरजीविता यानी सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट के विचार में कुछ ज़्यादा ही विश्वास रखते थे। गंप्लोविच ने कहा है कि मनुष्य अक्सर झुंडों और गिरोहों यानी हॉर्प्स में रहा करता था और गिरोहों का मुख्य आधार धर्म, भाषा, पेशा, रहन सहन और स्वार्थ की समानता थी। मनुष्य का यह समूह अपने से भिन्न किस्म के समूहों से झगड़ा किया करता था। गंप्लोविच का यह विचार कार्ल मार्क्स के इस विचार से बिल्कुल मिलता जुलता है कि द हिस्ट्री ऑफ ऑल हिथेरिटो एग्जिस्टिंग सोसाइटी इज द हिस्ट्री ऑफ क्लास स्ट्रगल। कार्ल मार्क्स की तरह उन्होंने समाज में आदि से अंत तक संघर्ष ही संघर्ष देखा। सोरोकिन ने गम्पलोविच के इस समूह संघर्ष यानी ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत को स्पष्ट करने के लिए उनके सिद्धांत के चार मूलभूत कारणों की चर्चा की है, जो इस प्रकार है। पहला, मानव जाति की उत्पत्ति प्रारंभ में छोटे घुमक्कड़ गिरोहों से हुई। द थ्योरी ऑफ पॉलीजेनेसिस। दूसरा, मनुष्य के जत्थों के बीच में घृणा एवं द्वेष की भावना पाई जाती थी, जिसके कारण आपस में वे लोग लड़ते रहते थे। तीसरा, मनुष्यों के जत्थों के बीच संघर्ष होने से समूह के आकार में वृद्धि हुई, क्योंकि जीता हुआ झुंड हारे हुए झुंड को अपने में मिला लेता था। एवं चौथा, विजयी समूह हारे हुए लोग को अपनी प्रजा या दास बनाकर उसका शोषण करता था। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि गम्पलोविच का समूह से तात्पर्य प्रजातीय समूह यानी रेसिकल ग्रुप से या समुदाय से था, किसी और प्रकार के सामाजिक समूहों से नहीं। सोरोकिन 1978 ने आगे बताया है कि मनुष्य के झुंडों के बीच संघर्ष की प्रक्रिया से राज्य यानी स्टेट, कानून यानी लॉ एवं सामाजिक स्तरण यानी सोशल स्ट्रेटिफिकेशन की उत्पत्ति हुई। विजयी समूह यानी विक्टोरियस ग्रुप ने पराजित समूह यानी वैंक्यूस्ड ग्रुप पर शासन करने के लिए राज्य का निर्माण किया, और जीते हुए लोग शासक हुए तथा हारा हुआ समूह शासित। हारे हुए समूह पर सुचारू रूप से शासन एवं उसके शोषण के लिए कानून बनाया गया। चूंकि शासक लोगों ने अपने आप को समाज के सबसे ऊपरी स्तर पर रखा, इससे समाज में स्तरण यानी स्ट्रेटिफिकेशन एवं असमानता यानी इनइक्वालिटी की उत्पत्ति हुई। गम्पलोविच के सिद्धांत में कई दोष भी हैं, जिसकी संक्षेप में यहाँ चर्चा की जा रही है। बहुत इतिहासकारों के लिए यह स्वीकार करना कठिन है कि समाज में परिवर्तन का मुख्य स्रोत संघर्ष रहा है। होब हाउस, विलर एवं गिन्सबर्ग जैसे समाजशास्त्रियों ने 298 प्राचीन समाजों का अध्ययन किया, जिसमें 9 ऐसे समाज थे जहां युद्ध की बात न तो कभी सुनी और न ही युद्ध की स्थिति कभी महसूस की, और 57 ऐसे समाज थे जहां लड़ाई के बाद कैदियों का हस्तांतरण हुआ करता था। इन तथ्यों को देखने से ऐसा लगता है कि पराजित और विजयी मनुष्य के झुंडों से राज्य, कानून एवं सामाजिक स्तरण की उत्पत्ति हुई। जैसा कि गम्पलोविच ने दलील पेश किया है, पर यह संदेहजनक है। गम्पलोविच का यह विचार कि मनुष्यों के झुंडों के बीच दुश्मनागत की भावना पाई जाती है, यह भी संदेहास्पद है। उन्होंने समाज में पाए जाने वाले संघर्ष की बात तो बढ़ा चढ़ाकर कहा है। सोरोकिन ने कहा है कि यदि समाज में संघर्ष ही संघर्ष होता तो समाज कब का समाप्त हो गया होता। तथ्य तो यह देखने को मिलता है कि मध्यकालीन एवं आधुनिक समाज की तुलना में प्राचीन समाज में युद्ध कम ही हुआ करता था। रैल्फ डारेनडॉर्फ का विचार, द थॉट्स ऑफ रैल्फ डारेनडॉर्फ। कार्ल मार्क्स की तरह जर्मन समाजशास्त्री डारेनडॉर्फ ने अपनी पुस्तक क्लास एंड क्लास कन्फ्लिक्ट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी में संघर्ष सिद्धांत को समर्थन दिया है, पर वे मार्क्स एवं वेबर के विचारों के साथ साथ 19वीं सदी के शास्त्रीय उदारवादी सिद्धांतों से भी काफी प्रभावित थे। उनके विचार न तो ज्यादा मार्क्सवादी हैं और न ही ज्यादा प्रकार्यवादी। डारेनडॉर्फ का मानना है कि हरेक सामाजिक व्यवस्था का आधार शक्ति का सोपान क्रम यानी हायरार्की ऑफ पावर होता है। समाज का शक्तिशाली व्यक्ति अपने से कमजोर व्यक्ति को दबाता रहता है। यह लोगों को सामाजिक नियमों एवं कानूनों में बांधकर समाज में अनुरूपता एवं एकमतता यानी कॉन्फॉर्मिटी एंड कॉन्सेंसस पैदा करता है, अर्थात समाज में अनुरूपता एवं एकमतता स्वाभाविक रूप से पैदा नहीं होता बल्कि उत्पीड़न से पैदा किया जाता है। डारेनडॉर्फ के अनुसार शक्ति और सत्ता पावर एंड ऑथोरिटी प्रत्येक समाज की प्रमुख विशेषता है। इसके अभाव में हम किसी भी समाज की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह सामाजिक संरचना के निर्माण की आवश्यक शर्तों में से है, इसलिए इसे सामाजिक व्यवस्था की प्रकार्यात्मक पूर्व शर्तें यानी फंक्शनल प्रीरिक्विजिट भी कहा जाता है। पर सत्ता का बंटवारा समाज के लोगों के बीच समान रूप से कभी नहीं होता है। सत्ता का वितरण हमेशा असंतुलित ढंग से होता है, चूंकि हर कोई सत्ता को अधिक से अधिक हथियाना चाहता है, इसलिए समाज में संघर्ष होता है। मार्क्स की तरह डारेनडॉर्फ भी संघर्ष के सिद्धांत को स्वीकार करते हैं, पर मार्क्स के विचारों के विपरीत उनके संघर्ष का आधार आर्थिक न होकर राजनीतिक है। संघर्ष का कारण आर्थिक शोषण न होकर सत्ता के द्वारा व्यक्तिगत स्वार्थ की पूर्ति है। उनका यह विचार उत्पीड़न का सिद्धांत थ्योरी ऑफ कोएरिशन पर आधारित है। डारेनडॉर्फ के अनुसार हर सामाजिक संरचना में संघर्ष का बीज छुपा होता है, जो उसमें परिवर्तन की प्रक्रिया को निरंतर चलायमान रखती है। मार्क्स के आर्थिक संरचना या मौलिक संरचना की जगह डारेनडॉर्फ ने सत्ता संरचना यानी ऑथोरिटी स्ट्रक्चर की चर्चा की है। सत्ता संरचना में मुख्यतः दो हिस्से होते हैं, शासन यानी डोमिनेशन एवं दमन यानी सब्जेक्शन। सत्ता संबंध यानी ऑथोरिटी रिलेशंस के अंतर्गत शासक वर्ग शासित वर्ग के व्यवहारों को आदेश चेतावनी एवं निषेधों के द्वारा नियंत्रित करते हैं। जब शासक वर्ग सत्ता पर काफी दुरुपयोग करता है तो संघर्ष की प्रक्रिया स्वतः शुरू हो जाती है। चूंकि मनुष्य के विभिन्न स्वार्थों की पूर्ति सत्ता पर आधारित है, इसलिए सत्ता के लिए संघर्ष एक ऐसी प्रक्रिया है जिसे हम चाहकर भी समाज में समाप्त नहीं कर सकते। सत्ता का समाज में समाज बंटवारा कभी भी संभव नहीं है, अतः संघर्ष एक अनिवार्य एवं सर्वव्यापी प्रक्रिया है। स्वाभाविक रूप से परिवर्तन भी एक सर्वव्यापी प्रक्रिया है। समाज में सभी परिवर्तन संघर्ष के द्वारा संभव हो पाता है। मार्क्स का आर्थिक कारण बहुतों से कारणों में से एक है। मार्क्स का आर्थिक कारण संघर्ष की संपूर्ण कहानी नहीं कह सकती है। डोरेंडॉर्फ ने बताया है कि संघर्ष को निर्देशित एवं संस्थाकृत, चैनलाइज्ड एवं इंस्टीट्यूशनलाइज्ड किया जा सकता है, पर संघर्ष को समाज से अलग नहीं किया जा सकता है। डोरेंडॉर्फ का यह सिद्धांत पार्सन्स और अन्य प्रकार्यवादी विचारकों के अखिल एकमतता यानी पैन कंसेंसस की विचारधारा का विरोधी है। डोरेंडॉर्फ प्रकार्यवादियों के संतुलन प्रारूप, इक्विलिबेरियम मॉडल और नियामक एकमतता नॉर्मेटिव कंसेंसस की बातों का खंडन करते हैं। उनका मानना है कि संतुलन यानी इक्विलिबेरियम और एकमतता यानी कंसेंसस समाज में उत्पीड़न से ही पैदा होता है। यह कोई स्वाभाविक सहयोगी अवस्था नहीं है। जैसा कि उल्लेख किया जा चुका है कि संघर्ष को सामाजिक जीवन में सदा के लिए अलग कर देना असंभव है, क्योंकि किसी भी सामाजिक संगठन की सत्ता संरचना में सत्ता की असमान बंटवारे के परिणाम स्वरूप विरोधी हित समूहों का निर्माण होना एक स्वाभाविक घटना है। कहा जाता है कि संघर्ष को न तो निरंकुश राजा और न ही दार्शनिक राजा सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। डोरेंडॉर्फ के ही शब्दों में, द अंडरलाइंग एजम्पशन इज दैट कॉन्फ्लिक्ट कैन बी टेम्पोररी सप्रेस्ड, रेगुलेटेड, चैनल्ड एंड कंट्रोल्ड, बट दैट नाइदर अ फिलोसफर किंग नॉर अ मॉडर्न डायरेक्टर माफ करिए नॉर अ मॉडर्न डिक्टेटर कैन एबोलिश इट वंस एंड फॉर ऑल। संक्षेप में, सत्ता का असमान वितरण ही संघर्ष की प्रक्रिया का मौलिक स्रोत है। वर्ग संघर्ष यानी क्लास स्ट्रगल से होने वाला परिवर्तन भी मूलतः सत्ता व्यवस्था यानी ऑथोरिटी सिस्टम में होने वाला परिवर्तन ही है। सत्ता की संरचना में परिवर्तन उन लोगों को हटाने से होता है जो शासन की स्थिति में हैं या शासन के केंद्र में हैं। उपर्युक्त विवेचना से स्पष्ट है कि कार्ल मार्क्स की तरह ही डोरेंडॉर्फ ने समाज में निहित संघर्ष एवं परिवर्तन की व्यापकता को स्वीकार करते हुए वर्ग संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का मुख्य स्रोत माना है। मार्क्स ने जहां वर्ग संघर्ष को आर्थिक परिधि में घूमते देखा, वहीं डोरेंडॉर्फ ने इसे सत्ता परिधि में घूमते हुए देखा। लुइस ए कोसर का विचार, थॉट ऑफ लुइस ए कोसर। कोसर एक ऐसे अमेरिकन समाजशास्त्री हैं जिनके विचारों में प्रकार्यवादी यानी फंक्शनलिज्म एवं संघर्ष यानी कॉन्फ्लिक्ट संबंधित दोनों सिद्धांतों के तत्व मौजूद हैं। इसलिए टर्नर ने उन्हें संघर्ष मूलक प्रकार्यवादी कॉन्फ्लिक्ट फंक्शनलिस्ट कहा है। कोसर ने अपने पुस्तक द फंक्शंस ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट में डोरेंडॉर्फ एवं पार्सन्स का काफी विरोध किया है। उन्होंने बताया है कि डोरेंडॉर्फ ने अन्य संघर्ष विचारकों की तरह संघर्ष को मात्र विघटनकारी प्रक्रिया के रूप में लिया है, तो पार्सन्स ने समाज में मात्र संतुलन ही देखा है। पार्सन्स का प्रकारवादी सिद्धांत संघर्ष को जानबूझकर नज़रअंदाज करता है। प्रकारवादियों ने डर्कहाइम से लेकर पार्सन्स तक विचलन एवं विरोध, डेविएंस एंड डिसेंट को सामाजिक व्यवस्था में संतुलन के लिए व्याधिकीय स्थिति यानी पैथोलॉजिकल कंडीशन के रूप में लिया है, अर्थात संघर्ष को लोगों ने दुष्प्रकार्य यानी डिसफंक्शंस के रूप में लिया है। यह यथार्थ का एक तरफा चित्रण है। संघर्ष सामाजिक व्यवस्था का एक प्रकारवादी यथार्थ है, इसे झूठलाया नहीं जा सकता है। कुसर ने बताया है कि सामाजिक संघर्ष का सकारात्मक पहलू कोई कम महत्वपूर्ण नहीं है। जैसे भारत में आज़ादी की लड़ाई ने विभिन्न जाति, समुदाय, धर्म एवं प्रदेश के लोगों को एक सूत्र में बांधने का काम किया, संघर्ष हमेशा समाज के लिए हानिकारक ही नहीं होता है। कोसर ने यह भी कहा है कि मार्क्स एवं डोरेंडॉर्फ ने संघर्ष के विध्वंसात्मक परिणाम पर कुछ ज़्यादा ही जोर दिया है, जो उचित नहीं है। कोसर ने अपने सिद्धांत में सामाजिक संघर्ष के प्रकार्यात्मक पहलुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। सामाजिक संघर्ष के मुख्यतः दो परिणाम होते हैं, संगठनात्मक एवं विघटनात्मक। संगठनात्मक या सकारात्मक परिणाम उस समय देखने को मिलते हैं जब संघर्षरत दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों में एक जैसी होती है। दूसरी ओर सामाजिक संगठन के विघटनात्मक या नकारात्मक परिणाम उस समय उत्पन्न होते हैं जब दो विरोधी समूहों की आस्था समाज के आधारभूत मूल्यों के विपरीत होती है। ऐसे समूह एक दूसरे के अस्तित्व को मिटाने का हर संभव प्रयास करते हैं। इससे समाज को आर्थिक हानि के साथ ही अराजकता एवं अशांति का सामना करना पड़ता है। इसके बावजूद कोसर का मानना है कि संघर्ष आवश्यक रूप से दुष्प्रक्रियात्मक कभी नहीं है, बल्कि समूह के निर्माण तथा स्थायित्व के लिए कुछ मात्रा में संघर्ष का नितांत आवश्यक तत्व है। फार फ्रॉम बीइंग नेसेसरली डिसफंक्शनल, अ सर्टेन डिग्री ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज एसेंशियल एलिमेंट इन ग्रुप फॉर्मेशन एंड द परसिस्टेंस ऑफ ग्रुप। कोसर की उपयुक्त विचार से यह स्पष्ट होता है कि संघर्ष सदा विघटनकारी ही नहीं बल्कि संगठनात्मक भी होता है। सामाजिक संघर्ष से कभी समाज में परिवर्तन आता है तो कभी विभिन्न अंग के पारस्परिक संबंधों में वृद्धि होती है। दूसरे शब्दों में सामाजिक संघर्ष से परिस्थितियों के अनुसार सामाजिक परिवर्तन एवं सामाजिक नियंत्रण दोनों ही होता है। वस्तुतः कोसर की अभिरुचि संघर्ष के सामाजिक प्रकारों से है। जॉर्ज जिमेल के भांति ही कोसर ने यह समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह संघर्ष नई खोज एवं रचनात्मक कार्यों को प्रेरित कर सामाजिक व्यवस्था को गतिशील बनाए रखती है। संघर्ष की प्रक्रिया नए आदर्श नियमों की स्थापना एवं व्यक्तियों के असंतोष को दूर करने में सहायता पहुंचाती है। बाह्य समूह से संघर्ष होने पर अंतः समूह के सदस्यों के बीच एकता बढ़ जाती है। प्रतिस्पर्धा, जो कि संघर्ष का ही एक स्वरूप है, सामाजिक एवं आर्थिक व्यवस्था में प्रगति का मार्ग प्रशस्त करती है। इसमें निसंदेह सामाजिक व्यवस्था में अनुकूलन की क्षमता बढ़ जाती है। लोगों को तत्व और निराशा से भी बहुत राहत मिलती है। अन्य संघर्ष विचारकों की विचारधारा के विपरीत कोसर ने बताया है कि संघर्ष का मुख्य कारण स्वार्थों की टकराहट यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है। स्वार्थ का स्वरूप आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक आदि कुछ भी हो सकता है। इस तथ्य को स्पष्ट करते हुए कोसर ने बताया है कि जब कोई दबा हुआ व्यक्ति अपनी वर्तमान स्थिति के प्रति जागरूक हो जाता है और यह सोचने के लिए विवश हो जाता है कि अन्याय करने वाले शासक वर्ग या कोई अन्य सामाजिक समूह का विरोध किया जाना चाहिए तो संघर्ष शुरू हो जाता है। किसी भी सामाजिक व्यवस्था यानी सोशल ऑर्डर का आधार सर्वसम्मति है। जब हरेक व्यक्ति अपने स्वार्थ या हितों के प्रति समान रूप से जागरूक हो जाता है तो सामाजिक सौहार्द में कमी आ जाती है, समाज में संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जब तक शासित व्यक्ति अन्याय या शोषण को वैध मानता है तब तक समाज में स्थिरता रहती है, और जब वैधता में कमी आती है तो संघर्ष उत्पन्न हो जाता है। टर्नर ने कहा है कि कोसर का संघर्ष विचार काफी लोकप्रिय है, क्योंकि उन्होंने प्रकार्यवादी एवं संघर्षवाद के सिद्धांत के बीच संतुलन या समन्वय की स्थिति प्रदान किया है। कोसर ने खुद कहा है कि उन्होंने दोनों सिद्धांतों में सुधार करने का प्रयास किया है। कोसर ने अपने विचार में मार्क्स के द्वंद्वनात्मक संघर्ष एवं डोरनडॉर्फ के संघर्ष सिद्धांत को संतुलित किया है। वे पहले प्रकार्यवादी समाजशास्त्री हैं जिन्होंने यह बताने की कोशिश की है कि संघर्ष समाज की व्यवस्था के लिए हानिकारक होते हुए भी कभी कभी सुरक्षा कपाट का काम करता है, जिससे वर्तमान सामाजिक व्यवस्था को बने रहने में सुविधा होती है। उनके विचार से यह भी स्पष्ट होता है कि सामाजिक संघर्ष के यथार्थ को झुठलाया नहीं जा सकता। परिणाम चाहे जो भी हो, संघर्ष एक विश्वव्यापी यथार्थ है। संक्षेप में, कोसर ने सामाजिक संघर्ष के सकारात्मक प्रकारों पर अधिक बल दिया है। संघर्ष के प्रकार वस्तुतः दूरगामी प्रभाव डालने वाले होते हैं। इससे सामाजिक संरचना में सामाजिक संगठन एवं विघटन दोनों तरह की प्रक्रियाएं कार्यरत होती हैं। एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण। संघर्षवादी सिद्धांत के समर्थक यह बहस करते हैं कि समाज में परिवर्तन संघर्ष के द्वारा ही आता है, क्योंकि संघर्ष में व्यवस्था के लिए विरोध छिपा होता है। ऊपर से देखने में तो ऐसा लगता है कि यह विचार बिल्कुल सही है, क्योंकि जब समाज के विभिन्न अंगों के बीच पारस्परिक संबंध सामंजस्य या सौहार्दपूर्ण होगा तो परिवर्तन की कोई गुंजाइश नहीं है। सामाजिक व्यवस्था के विभिन्न अंगों के संबंध अच्छे रहने पर परिवर्तन के लिए किसी भी ओर से दबाव नहीं बढ़ पड़ता है। इसलिए सहज भाव से लोग यह स्वीकार कर लेते हैं कि सामाजिक परिवर्तन संघर्ष के ही द्वारा आता है। दूसरे सभी सिद्धांत सामाजिक परिवर्तन को बहुत स्पष्ट नहीं कर पाते, लेकिन यथार्थ कुछ भिन्न है। संघर्षवादियों ने जिस संघर्ष की चर्चा की है उसे हम संरचनात्मक संघर्ष कहते हैं। वे छिटपुट संघर्ष की बात नहीं करते। संघर्षवादियों के विचार से समाज दो या दो से अधिक विरोधी खेमों में हमेशा के लिए बटे होते हैं, और वे अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक दूसरे से संघर्ष करते रहते हैं। पारसी कोइन का कहना है कि जब समाज में सिर्फ संघर्ष की स्थिति होगी तो परिवर्तन की कोई गुंजाइश ही नहीं है। जैसे उद्योगों में भी जब मजदूरों एवं मालिकों के बीच हमेशा संघर्ष होगा तो परिवर्तन की कोई संभावना ही नहीं होगी। संघर्ष या तनाव से परिवर्तन के सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं। परिवर्तन तो तब होता है जब दो विरोधी खेमों के लोग आपस में मिलकर कोई बीच का रास्ता निकालते हैं। इसलिए कोइन ने कहा है कि परिवर्तन द्वंद से नहीं बल्कि समझौता से आता है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि द्वंद से विरोध उत्पन्न होता है, परिवर्तन का रास्ता नहीं खुलता है। द्वंद से समाज में सिर्फ परिवर्तन एवं विकास की गति ही अवरुद्ध होती है, जिस समाज के अंतर्गत क्षेत्रीयता, प्रजाति या जाति, धर्म और भाषा के आधार पर काफी विभाजन है, उससे जुड़े संघर्ष या द्वंद मौजूद हैं तो उस समाज का विकास संभव नहीं है। विकास के लिए शांति, सहयोग और लोगों के बीच आपसी मेलजोल नितांत आवश्यक है। इसलिए मात्र संघर्ष को सामाजिक परिवर्तन का स्रोत या कारण नहीं माना जा सकता है। दुनिया में ऐसा कोई भी समाज नहीं है जहां संघर्ष नहीं है। यह मुख्य रूप से हर जगह पाया जाता है। कुछ लोगों का मानना है कि परिवर्तन साधारण संघर्ष से नहीं बल्कि संघर्ष की तीव्रता से आता है। अमेरिका के निग्रो जीवन में जो परिवर्तन आया है वह गोरे लोगों के साधारण विरोध से नहीं आया है, बल्कि निग्रो और वाइट के बीच संघर्ष की तीव्रता से आया है। यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि निग्रो के जीवन में जो परिवर्तन आया है वह गोरे और निग्रो के बीच संघर्ष की तीव्रता मात्र से ही नहीं आया है, क्योंकि उसमें विभिन्न किस्म के आर्थिक और सामाजिक विकास की भूमिका भी कम नहीं है। जब कोई परिवर्तन साधारण संघर्ष से नहीं होता तो लोग क्रांति का रास्ता अपनाते हैं, लेकिन ऐसा देखा गया है कि कभी कभी क्रांति से भी सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है, क्योंकि हर क्रांति के विरोध में प्रतिक्रियाएं होती हैं। कभी कभी विरोधी क्रांति के द्वारा संघर्ष को ही जड़ से उखाड़ फेंकने की कोशिश की जाती है। क्रांति से समाज में नई व्यवस्था उत्पन्न हो सकती है, पर सामाजिक परिवर्तन होना कोई आवश्यक नहीं है। जब तक क्रांति को वैधता नहीं मिलती तब तक परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात परिवर्तन वैधता एवं एकमतता से आता है, मात्र क्रांति से सामाजिक परिवर्तन नहीं आता है।